खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में,
हमारी राहों में
खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में,
हमारी राहों में।
आज बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में,
हमारी राहों में।
आज बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में,
हमारी राहों में
खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में,
हमारी राहों में।
शांति। एक जंगल में एक बंदर बहुत खुश था। एक डाली से दूसरी डाली कूदता फिरता झूमता गाता अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी तरह अपना जीवन बिता रहा था। और एक दिन अचानक जंगल से थोड़ा बाहर निकल गया और किसी गांव में पहुंच गया और गांव में देखा कि किसी घर में एक थाली में बहुत अच्छे अच्छे एप्पल सेब रखे हुए हैं और बहुत लाल लाल है। तो उसको लगता है मैं ये जाकर लूं, और वो वहां से दो एप्पल ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है इतने बड़े बड़े एप्पल और इतने लाल लाल, और लेकर वो जंगल में आ जाता है जैसे उसे कोई भारी प्राप्ति हुई है। परंतु जैसे ही वो सूंघने की कोशिश करता है उनमें कोई सुगंध नहीं आती है, और फिर खाने की कोशिश करता है तो उसके दांत को बड़ा सख्त लगते हैं। वो वास्तव में लकड़ी के बने हुए एप्पल थे, परंतु इतनी अमूल्य प्राप्ति जो हुई है वो इसे छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसे निहारते निहारते उसकी भूख ही खत्म हो गई। दिन रात उन्हीं को देखते रहता था, और अब दूसरी एक चिंता थी कि मेरे जो दूसरे साथी है उनको ये न मिले, इसके लिए और जोर से पकड़ के रखता था। और जब दोनों हाथों में वो पकड़ के थे तो वो दूसरे पेड़ों पर चढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि गिरने का डर था तो कैसे वो छोड़ दे। और लंबा समय हाथों में पकड़ के रखने की वजह से हाथ भी दुख रहे थे, पर छोड़ भी नहीं सकता था। और फिर जंगल से जब गुजरता था, जब दूसरे छोटे फल देखता था और उनकी सुगंध भी आती थी और खाने की इच्छा भी होती थी और भूख भी लगती थी, परंतु इनको कैसे छोड़े, क्योंकि ये तो इतने बड़े एप्पल है और ऐसे एप्पल तो किसी के पास है भी नहीं, और कितने लाल लाल है और कितनी चमक है इनके ऊपर। अंदर से दुखी भी था पर खुश भी था, पर खुशी थोड़ी झूठी थी, और जब भी कोई देखता था तो छिपाना पड़ता था, तो छिपाना भी पड़ता था। हाथ भी दुख रहे थे, भूख भी बहुत लग रही थी पर खा भी नहीं पाता था, फिर भी बीच बीच में कोशिश तो करता था खाने की, पर जब भी खाता था तो दांतों को भी चोट लगती थी। दिन भर घूमता रहा दो एप्पल को घूम लेते हुए, और बाकी कुछ भी नहीं कर पाया, खेल भी नहीं पता था। और जब ये बहुत ही हो गया तब फिर उसने शाम को सोचा अब नहीं मैं कर सकता। ये जो दूसरे फल थे इन दोनों एप्पल को उसने फेंक दिया, और जो उसके स्वादिष्ट फल थे जंगल के भले वो छोटे थे आखिर उन्हीं को पकड़ा और उन्हीं को खाया। और तब कहीं जाकर उसे खुशी मिली। ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो दुखी था और क्यों वो छोड़ना नहीं चाहता उन एप्पल को? क्या कारण है? लोभ। कौन सा लोभ?
सॉरी,
एक तो ये कि ये मुझे मिला है और बाकियों को नहीं मिला, और उसका रंग और रूप ने उसे आकर्षित किया। वस्तुएं जो झूठी है वो ज्यादा आकर्षित करती है, वस्तुएं जो खोटी है उनका रंग रूप ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। और ऐसे और किसी के पास नहीं थे, केवल मेरे पास थे। और ये कहावत किसी दूसरे अर्थों में प्रयोग की जाती है। और स्टेटस सिंबल, स्टेटस। और इतना मेहनत से मैं लेके आया, इनके इन्होंने नहीं लाया, ये मैंने लाया है। और थक क्यों गया वो? क्योंकि ऐसी वस्तु जो मुझे मिली है इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, भले उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं हो रही है, परंतु पकड़ के है उसको, पता है ये व्यर्थ है परंतु छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि बाहर का रूप बहुत ही सुंदर है, बाहर का बहुत ज्यादा आकर्षण है, दोनों हाथ भी दुख रहे हैं क्योंकि कब से पकड़े हुए हैं। और जितना ज्यादा समय कोई चीज पकड़ के रखो उतनी वो भारी हो जाती। अगर ये पेन का वजन कितना है? कितना है? नहीं, ये डिपेंड करता है ये हर व्यक्ति ने कितना समय तक पकड़ा है। इस पेन का वजन उतना है, उसका संबंध है टाइम से। ये ऐसे पकड़ने को कहा किसी ने, पकड़ो, पकड़ा, कुछ भी नहीं है वजन। 5 मिनट तक पकड़ के रखो, 5 मिनट के बाद इसका वजन कुछ और होगा। 5 घंटा तक इसी पेन को इसी तरह पकड़ के रखो, 5 घंटे के बाद इसका वजन वो नहीं रहेगा जो शुरुआत में था, 5 घंटे के बाद इसका वजन बढ़ गया। कहां से इसमें नया वजन आ गया? तो वस्तुओं का वजन निर्भर करता है समय से, स्मृतियों का वजन निर्भर करता है समय से, चोट जो दिल को लगी है उनका वजन निर्भर करता है कितना समय तक उन चोटों को पकड़ के रखा है। तो उसने पूरा दिन भर उस आम, उस सेब को पकड़ के रखा, और जितना अधिक समय पकड़ के रखा उतना वो थक गया, और जब तक वो पकड़ के था तब तक बाकी और कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सारा ध्यान उसी में लगा हुआ था। वही जो घटना, वही जो बात जो जीवन में घटित हो गई, उसी को ऐसा पकड़ के रखा है कि बाकी और कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं है। उसी के लिए सोच रहे, उसी व्यक्ति का सोच रहे, उसी संबंध के बारे में सोच रहे, उसी घटना के बारे में सोच रहे, उसी बात के बारे में जो पाप था, विकर्म था, व्यर्थ था, जो हो चुका पर अब तक सोच जारी है, मंथन चालू है गहरा एकांत में बैठकर। लास्ट संडे की अव्यक्त वाणी, 2 पार्टियां थी, पार्टी 1 पार्टी 2। तुमको किस झूले में झूलते रहना है? किस झूले में झूलते रहना है? खुशी के झूले में, सुख के झूले में, ज्ञान के झूले में, प्रेम के झूले में, आनंद के झूले में क्यों झूलते रहना है? क्योंकि नीचे मिट्टी है और तुमको ये खुशी मिली है, और ऐसी खुशी केवल बाप से मिल सकती है। शुरुआत में ही बाबा ने कहा तुम वर्षे के अधिकारी हो, और वर्षे के अधिकारी अर्थात शक्तिवान, सर्वशक्तिवान की संतान हो, इसलिए बच्चा कैसा होगा? बाप समान सर्वशक्तिवान होगा। और जो प्राप्तियां बाप से होती है और किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि 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 बाप सर्वज्ञ है, आत्माएं सर्वज्ञ नहीं है, आत्माएं अल्पज्ञ है। जो मनुष्यों से प्राप्ति होती है वो कभी भी वो नहीं हो सकती जो भगवान से होती है। फिर भी स्वभाव मन का ऐसा है मनुष्य का कि वो मनुष्य की तरफ ही भागता है, उनसे ही लेना चाहता है, उनका ही प्यार चाहता है, उनसे ही एक्सपेक्टेशंस है, उनसे ही अपेक्षाएं है, उनकी ही स्तुति चाहिए, उनसे ही शक्ति चाहिए, उनसे ही पावर चाहिए, उनकी सकाश चाहिए, उनका केयर चाहिए, उनकी अटेंशन, उनका अटेंशन चाहिए, उनसे सिंपति चाहिए, सहानुभूति चाहिए, सब कुछ उनसे चाहिए, उनसे स्तुति चाहिए। क्यों? बाबा कह रहे हैं दो चीजें, एक है बाप से प्राप्तियां, एक है मनुष्य से प्राप्तियां, एक है अविनाशी प्राप्तियां, एक है विनाशी प्राप्तियां। तुम किस प्राप्ति में हो और कौन सी इच्छाएं रखते हो? तो मनुष्य की प्राप्तियां कैसी है? सर्वज्ञ नहीं है, विनाशी है, अल्पज्ञ है, इसलिए निरंतर ये याद रखो और निरंतर इस झूले में झूलते रहो। कौन कौन से झूले बताए? पांच। पहला तो सुख का झूला, और ये सुख साधारण सुख नहीं है, ये सुख इंद्रिय जनित सुख नहीं है, इंद्रियों का ये सुख नहीं है, ये सुख है अति इंद्रिय, ये सुख अति इंद्रिय सुख है। दूसरा खुशी, ये रियलाइजेशन की हमारे पास इस संसार की सबसे अधिक खुशी है। जो खुशी हमको मिली है इस संसार में और किसी को नहीं मिली, जो खुशी का स्रोत हमने पाया है वो संसार में और किसी ने नहीं पाया। इधर नीचे आ जाए, पीछे वाले, खुशी का झूला, सुख का झूला, ज्ञान का झूला, ज्ञान के झूले में झूलते रहना, अर्थात क्या? ज्ञान के झूले में झूलते रहना अर्थात क्या करते रहना? और क्या करते रहना? ज्ञान के झूले में झूलना अर्थात ज्ञान सुनना, ज्ञान के झूले में झूलना अर्थात चिंतन करना ज्ञान का, ज्ञान के झूले में झूलना अर्थात ज्ञान लिखना, राइटिंग, ज्ञान के झूले में झूलना अर्थात सुनना, मनन करना, लिखना, सुनाना, नैरेटिंग, दूसरों को ज्ञान सुनाना, ज्ञान का चिंतन करना अर्थात डिस्कस करना, ज्ञान का क्या करना? डिस्कशन करना, ज्ञान का डिस्कशन करना, ज्ञान सुनना अर्थात ज्ञान के झूले में झूलना अर्थात निष्कर्ष निकालना, उस ज्ञान को परिस्थितियों में अप्लाई करना, और लास्ट निष्कर्ष निकालना, पढ़ना और रिवाइज करना, रीडिंग एंड रिवाइजिंग एक साथ। तो ज्ञान सुनना, उसके बारे में सोचना एकांत में, कल की मुरली में था एकांत में क्या करो मीठे बच्चे? विचार सागर मंथन करो एकांत में, शक्ति आएगी तब, नहीं तो नहीं आएगी। सुनना, विचार करना, पढ़ना, फिर लिखना, फिर चर्चा करना, दूसरों को सुनाना, रिवाइज करना, और ये सब करके अप्लाई करना परिस्थितियों में, और फिर लास्ट निष्कर्ष निकालना, ये ज्ञान की पॉइंट थी, इसको इधर अप्लाई किया, क्या हुआ? एकदम क्रोध की अवस्था थी, अब बस क्रोध का ज्वालामुखी फूटने ही वाला है और कोई हमारे क्रोध का भाजन बनने ही वाला है, क्योंकि गलती ऐसी की है उसने। बस उसी पल ज्ञान की एक पॉइंट अप्लाई कर ली कोई, सी द रिजल्ट क्या हुआ। और ज्ञान अप्लाई नहीं किया तो क्या हुआ? निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड, एनालाइज करना कि ये हमने इससे सब कुछ करके ये पाया, ये सब किया परंतु अप्लाई नहीं कर पाए, तो निष्कर्ष निकालेंगे कि ये अप्लाई नहीं हो पाई। अब अप्लाई क्यों नहीं हुई, जबकि पता तो था पॉइंट, पर परिस्थिति चली गई उसके बाद याद आई। तो ज्ञान के झूले में झूलना, सुख के झूले में झूलना, खुशी के झूले में झूलना, आनंद के झूले में झूलना, प्रेम के झूले में झूलना, प्रभु प्रेम के झूले में झूलते रहना। तो बाबा कह रहे हैं कि झूले में झूलो तो क्या होगा, नीचे नहीं आओगे, मिट्टी पे नहीं जाओगे, खराब नहीं बनोगे, स्वच्छ रहोगे, मैले नहीं होंगे, क्योंकि नीचे मिट्टी क्या करती है, मैला करती है। और क्या करती है मिट्टी? मिट्टी में मिला देती है। और क्या करती है मिट्टी? मिट्टी क्या करती है? मैला तो करती है, और क्या करती है? धूल चटा देती है। मिट्टी में इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, जर्म्स होते हैं, कुछ कुछ होता है उसमें, तो नीचे उतरना ही नहीं है। नीचे उतरे कि नीचे मिट्टी है, निरंतर ऊपर रहना, यही ब्राह्मण जीवन है। ये जीवन है ऊपर रहने का, मिट्टी में आने का नहीं। मिट्टी में बहुत समय रहे, मिट्टी में रहे भी, दूसरों को मिट्टी लगाई भी, अन सुधरे ले और सुधरे ले, अनार्य और आर्य, अन सुधरेले बहुत रहे, अब सुधरेले बन जाओ। मिट्टी का ही काम किया, मिट्टी को ही बहुत प्यार किया, अब मिट्टी से प्यार करने का समय नहीं है। अब किसको प्यार करने का समय? चिन्मय, मृण्मय को नहीं। मृण्मय अर्थात मिट्टी, चिन्मय अर्थात चैतन्य। तो झूले में झूलते रहो, निरंतर झूले में झूलते रहो, किसी ना किसी झूले में झूलते रहो। और ये एक वरदान है। ये वरदान क्या करता है? वरदान वरदाता की याद दिलाता है। ये वरदान सेफ्टी का साधन है। ये वरदान परिस्थितियों में काम करता है। ये वरदान मेहनत से मुक्त कराता है। कोई भी चीज को वरदान के रूप में स्वीकार करना तो क्या होगा? मेहनत नहीं लगेगी। और वरदान के लिए बाबा ने क्या कहा विनोद भाई? अभी अभी जो मुरली चली थी, वरदान के लिए क्या कहा था शांतिवन में, अप्रैल वाली, 2 अप्रैल 2008 की मुरली, क्या कहा वरदान के लिए? सबको समान वरदान दिया परंतु लेने वाले नंबरवार हो गए। क्यों? कभी कभी और थोड़ा थोड़ा, ये दो शब्दों के कारण। तो तुमको करना क्या है? फलीभूत करना है। और फलीभूत करने की विधि क्या है? बांटना। फलीभूत करने की विधि कार्य में लगाना, हर उसी समय कार्य में लगाना, तो ही ये बीज फलीभूत होगा। तो जो भी वरदान के रूप में स्वीकार किया जाता है उस पर काम करना है। तो जब भगवान कह रहा है तुम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, तो ये केवल यहां तक रुकेगा नहीं, इस पर काम करना है। तो वरदान सेफ्टी का साधन है। वरदान क्या करता है? वरदाता की याद दिलाता है। वरदान, एक मुरली में कहा था ना, एक है बाप को याद करना, दूसरा है बाप के ज्ञान को याद करना। ज्यादा फायदा किस में है? बाप के ज्ञान को, बाबा ने खुद कहा है। एक है बाप को याद करना, एक है उसके ज्ञान को याद करना। ज्यादा फायदा है उसके ज्ञान को याद करना। वैसे उसके ज्ञान को याद करना और उसको याद करना एक ही है, क्योंकि उसी का ज्ञान ही है। तो निरंतर, तो ये फर्स्ट पार्टी से मुलाकात थी, जिसमें शुरुआत की बाबा ने सभी वर्षे के अधिकारी हो, और वर्षे के अधिकारी बनना अर्थात शक्तिशाली बनना। जैसे बाप शक्तिशाली है, वैसे तुम भी शक्तिशाली बनो। जैसा बाप वैसा बच्चा, पावरफुल बनना, शक्तिशाली बनना। शक्तिशाली अर्थात दुखी नहीं, शक्तिशाली अर्थात उदास नहीं, शक्तिशाली अर्थात नाराज नहीं, शक्तिशाली अर्थात पपेट नहीं। संतुष्ट मणि आत्माओं की निशानी में एक निशानी क्या थी? परिस्थितियां क्या लगती है उसको? कार्टून शो लगती है उसको। मनोरंजन की जीवन है, अतीन्द्रिय जीवन है, सुखमय जीवन है, ये संतुष्ट मणियों की निशानियां बताई थी अभी अभी मुरली में। तो शक्तिशाली अर्थात शक्तिशाली अर्थात नम्रता, शक्तिशाली अर्थात वीर, सामना करने वाला, घबराने वाला नहीं, निर्भीक, निडर, ये शक्तिशाली की निशानी है। किसी से नहीं डरता है, वो दिखाया है शास्त्रों में। भरत की मां, भारत की मां कौन? दुष्यंत और शकुंतला। वो जो शकुंतला थी, उसने अपने बेटे को कैसे तैयार किया, वो दिखाया ना उसका शेर का ऐसा मुंह चीरते हुए, जंगलों में रखा उसको और उसको शक्तिशाली बनाया, पावरफुल बनाया। उसको अपनी ममता को एक तरफ करके उसका लक्ष्य था कि मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली बनाया बने। ऐसी बहुत सारी माताएं हुई है इतिहास में जिनका इस तरह का गायन है कि उन्होंने अपने बेटों को कभी आराम से जीने नहीं दिया। बहुत बहुत उनको उनको एक ही लक्ष्य था। वैसा ही एक महाभारत में उदाहरण है, कौन सा शायद ही किसी को पता हो, चित्रांगदा, अर्जुन की पत्नी। अर्जुन की एक पत्नी चित्रांगदा है, मणिपुर, मणिपुर की। तो वो जब गर्भवती होती है तो कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि उसको उस पर संशय आ जाता है और उसको छोड़कर चला जाता है, और छोड़कर तो चला जाता है, और फिर बाद उसको रियलाइज होता है कि मेरे से गलती हो गई, और फिर वापस आने को होता है, परंतु इंद्रप्रस्थ और वो चीरहरण और वनवास सब में भूल ही जाता है, वो वहीं रह जाती है। तो वो उसका जो बेटा होता है, उसके बेटे को इतना तपाती है कि एक दिन इसके पिता को ये हराएगा। इसलिए तो ऐसी उसको ट्रेनिंग देती है बचपन से ही, एक दिन भी सोने नहीं देती उसको ढंग से, तपती रेत पर चलने को कहती है, क्या क्या करती है, बहुत बड़ी उसको ट्रेनिंग देती है। तो शक्तिशाली अर्थात घबराने वाला नहीं, शक्तिशाली अर्थात पावरफुल, परिस्थितियों के वार से थकने वाले नहीं, लड़ते लड़ते अथक, निर्भीक, पावरफुल, और शक्तिशाली अर्थात मजबूत, ताकतवर, सब एक ही हो गया। हर परिस्थिति में समान, समभाव, अंदर से टूटने वाले नहीं, क्योंकि व्यक्ति को जो तोड़ता है अंदर से टूटता है, तब वो कमजोर हो जाता है। तो कोई भी चीज आ जाए वो हारेगा नहीं, थकेगा नहीं। तो ये थी पहली मुरली, और फिर उसमें झूले के बारे में बताया, और फिर वरदान के बारे में बताया। जो भी वरदान मिलता है उसको क्या समझो? वरदान, वरदाता की याद दिलाए, और जो भी वरदान मिलता है उसको क्या समझो? ये सेफ्टी का साधन है। तो ये था फर्स्ट पार्टी। सेकंड पार्टी जो थी वो एक प्रश्न के रूप में था, पर उसमें प्रश्न ने लिखा हुआ था, एक बल एक भरोसे की निशानी क्या है? क्या है? जो मुरली चलती है वो केवल मधुबन में ही मुरली चलती है, श्रीमत जो है वो केवल मधुबन में ही श्रीमद् मिलेगी। पढ़ाई जो है केवल मधुबन में ही पढ़ाई है। अगर कोई संदेशी कहता है या कहती है इसके तन में बाबा आता है, उसके तन में बाबा आता है, तो ये क्या है? माया है। ये और रास्ते पे चले जाओगे, ये माया का धोखा है। और ये इस तरह की माया बहुत सारी है, जबकि यहां क्लियर कट डायरेक्शंस है कि बाबा की साकार मुरली उसमें जादू है, और कोई मुरली में जादू नहीं। जो ब्रह्मा तन के द्वारा मुरली चलेगी उसी में जादू है, और किसी संदेशी के द्वारा चलने वाली मुरली में जादू नहीं है। ये उस मुरली में भी है। 21 जनवरी 1969 फर्स्ट अव्यक्तवाणी यज्ञ की, संदेशियों का पार्ट कैसे चलेगा उसके विषय में डायरेक्शन जो बाबा ने दिए। और क्या कहा यहां पर? जो मुरली चलती है वो केवल मधुबन में। और कोई जगह कहता है, कोई यहां बाबा आ रहा है, वहां बाबा आ रहा है, इसके तन में आ रहा है, उसके तन में आ रहा है, आवाज वैसी ही है बाबा की जैसी, सेम आवाज है, और वो ज्ञान भी लगभग ऐसा ही सुना रहा है वो आत्मा। तो ये सब क्या है? परंतु बड़े बड़े इसमें फंस गए, 30-30, 40 साल वाले भी धोखे में आ गए, सब कुछ छोड़कर चले गए। ऐसा भी हुआ है। क्यों? कोई दिख रहा है किसी के तन में भगवान आया, और आवाज वैसी ही है, और मुरली भी चल रही है 4 पेज की, क्या करोगे? नहीं, हम भी बैठे सभा में और किसी के तन में भगवान आ जाए और वही मुरली जो नीचे चलती थी वैसी चल रही है, अब क्या करेंगे? प्रभाकर भाई, नहीं, पर अभी हमारे पास लेटेस्ट है, तुम्हारा तो बंद हो गया, हमारा लेटेस्ट है। अभी बताओ, अभी भाई की तुम्हारी कोई मुरली अभी तो है ही नहीं, ये हमारी अभी चल रही है। भगवान वो तो वो आत्मा ही बताएंगी जो सुनती है, उनको तो फील होता है, उनको तो फील होता है कि ये वही वाइब्रेशन है, क्योंकि उन्होंने भगवान की इधर 30 साल तक पालना ली थी और वो चले गए। यहां क्लियर कट डायरेक्शंस है, मुरली मधुबन के बाहर नहीं चलेगी। जो भी मुरली चली है आज तक इधर ही चली है। श्रीमत जो है वो मधुबन से है, पढ़ाई जो है वो मधुबन से है। अगर इसके अलावा कोई दूसरे के द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो वो माया है। और ऐसा पाठ यज्ञ के इतिहास में शुरुआत में भी चला था, प्यू प्यू का पाठ, प्यू का पाठ चला था, जिसमें यहां तक मम्मा और बाबा भी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, ये क्या है? ब्रह्मा तो मैं हूं, ये कौन आ रहा है? चित्र भी है ना, वो बैठी हुई है बहन गद्दे पर, बहन बैठी हुई है, बाद में बहन जी पलायन कर गए, कहीं कहां गए पता नहीं। तो ये सब होगा, नई नई आत्माएं आएंगी, वो कहेंगे हमें बाबा आ रहा है, उसमें बाबा आ रहा है। ये तो अभी पूरा हो गया यहाँ का, अभी इधर बाबा को तो काम करना है ना अपना, सतयुग की स्थापना, तो कहीं तो आएगा, तो इसलिए यहाँ आ रहा है। और सेम वर्ड्स, सेम सेम स्लो वॉइस, सेम अव्यक्त आवाज, और सेम धीरे धीरे, और वही आज। तो ये कौन आ रहा है फिर? कौन आ रहा है, ये प्रश्न है। हाँ, जो आ रहा है कोई अज्ञानी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है, जिस ढंग से बोला जा रहा है, वो ज्ञान की ही भाषा है। अगर वो मुरली भी आई है, पढ़ी होगी कईयों ने 4 पेज की, वो मुरली के शब्द जैसे लगते बाबा के ही शब्द है। आज बाप दादा इनको देख रहे हैं, समय की समीपता, वही वही भाषा, वही शब्द, सब कुछ वही, आवाज भी वैसी। तो
पहले यहां एक भाई थे, उनके बच्ची के तन में भी आते थे,
तो
भाई कितना चैलेंज करके,
और दूसरी जो आत्माएं आएगी, कभी कभी उनकी अतृप्त इच्छाएं थी बहुत सारी, वो अतृप्त रह गई, जो यज्ञ की ही आत्माएं थी वही आत्माएं प्रवेश कर रही है उनमें, और वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रही है, और उससे बहुत अटेंशन भी तो मिलता है, बहुत सारी उनकी यही तो इच्छा थी पर वो नहीं हो पाई, इसलिए वो आत्माएं की आवाज में, क्योंकि बोलती तो ज्ञान की ही बातें है, बड़ी अनन्य आत्माएं होगी पुरानी जो उनमें आ रही है इसलिए, परंतु डायरेक्शन है कि मधुबन ही एक स्थान है जहां मुरलियां चलेगी, दूसरा ब्रह्मा ही एक तन है जिसके द्वारा मुरलियां चलेगी, चाहे साकार या अव्यक्त ब्रह्मा, और कोई किसी के द्वारा मुरलियां नहीं चलेगी। तो यहां पर बाबा ने बहुत कहा है कि यह माया का धोखा है, बड़ी बड़ी बहने भाई कई सारे इस केस में आ गए और चले गए, छोड़कर चले गए, सब सबमिट कर दिया, ये लो बैच हम जा रहे हैं। तो ऐसा हुआ है, इसके लिए खबरदार, अगर कहीं पर भी कोई कहता है या बाबा आ रहा है, भगवान अच्छा आ रहा है, तो जो मुरली है अब तक जो मुरलियां चली इधर की धारण हो गई क्या? ये एक्साइटमेंट क्यों है कि इधर आ रहा है, इधर भी तो आ रहा था, इधर शांतिवन में आ रहा था तब तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, अभी इतनी नहीं एक्साइटमेंट, क्योंकि इसमें एक अहंकार की भी तृप्ति है कि हमने हमारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, हमको हमने जान लिया, ये भी इसमें थोड़ा सा एक सूक्ष्म भाग है अहंकार का। तो इसी ऐसे किसी भी धोखे में नहीं आना है, और संसार में ऐसा बहुत बार हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार हुआ है ऐसा। वो कहा था ना उस दिन, एक अरविंद महाराज थे महाराष्ट्र में, वो कहते थे मेरे में गजानंद महाराज आते थे, कोई कहता था एक दूसरा भाई मेरे में विष्णु आते हैं, उसमें विष्णु आते थे, अलग अलग माया के धोखे हैं, तो इनसे भी सावधान रहना है। तो ये दो बातें थी, एक तो झूले वाली, बाप समान शक्तिशाली बनने वाली, वरदान वाली, खुश रहने वाली, और दूसरा ये माया के नए रूप, नए माया का नया रूप है ये, जिसके बारे में शायद हम सोचा नहीं, और जो नए नए होंगे वो एकदम फंस जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ वैसा ही दिखता है, इसके लिए आकर्षण हो जाता है और फंस जाते हैं, तो इससे भी सावधान। ये तो एक रूप था नया, ऐसे ही माया के आगे चलकर बहुत सारे नए रूप आएंगे जो उनको कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है, समझ में ही नहीं आएगा ये क्या है, कंफ्यूजन इन श्रीमत, ये भी ठीक लगता है वो भी ठीक लगता है, तर्क, कुछ ऐसे तर्कवादी आएंगे, ऐसे तर्क देंगे, ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि उनके तर्क ठीक लगने लगेंगे, अब तक का जो फाउंडेशन है 30 साल 40 साल 10 साल 20 साल का वो हिलने लगेगा कि उनके तर्क के सामने, क्योंकि हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इसके लिए विचार सागर मंथन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ज्ञान की एक एक बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है, एक एक पॉइंट पर चिंतन करने की आवश्यकता है, अव्यक्त वाणियों की गहराई से स्टडी करने की आवश्यकता है, इसके लिए टाइम निकालने की आवश्यकता है, बिना टाइम निकाले ये काम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
हम है बाबा के।